दिन भर तारीख 1 जून दिन बृहस्पतिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। चीन ने कहा कि लगता है अमेरिका जलवायु परिवर्तन समझौते से अलग होना चाहता है, लेकिन उनका देश अपनी प्रतिबद्धताओं पर डटा रहेगा। महाराष्ट्र के किसान सड़कों पर उतरे, ट्रक टैंकर रोके, सामान गिराया। भारत प्रशासित कश्मीर में बार बार मानवाधिकार हनन की बात होती है, संघर्ष पत्थरबाजी की घटनाएं आम हैं, लेकिन सुरक्षा बलों पर क्या बीतती है?
उनके ऊपर में पत्थर चलाया जाता है जब वो ड्यूटी पर होते हैं। ये इनह्यूमन है, उनको थ्रेस करते हैं, ये पोक करना, ये उनको अग्रवेट करना, ये इनह्यूमन है।
कार्यक्रम में होगी आपकी राय भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, कुलदीप मिश्र से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने अमेरिका से जलवायु परिवर्तन पर हुए पेरिस समझौते में बने रहने की अपील की है। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते से बाहर भी आ जाता है तब भी बाकी सरकारों को इसका पालन करना चाहिए। इससे पहले यूएन के पर्यावरण कार्यक्रम के मुखिया एरिक सोलहाइम ने कहा था कि चीन, यूरोप और भारत अब इस मुद्दे पर अगुवाई कर रहे हैं और राष्ट्रपति ट्रंप के किसी फैसले का ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा। अमरीकी राष्ट्रपति आज ऐलान कर सकते हैं कि अमरीका अपना उत्सर्जन घटाने के वायदे पर कायम रहेगा या नहीं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गुरुवार को सेंट पीटर्सबर्ग में मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और साझा हितों के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई। इस मौके पर पुतिन ने कहा कि भारत हफ्ते भर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का औपचारिक सदस्य बन जाएगा। इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और रूस की दोस्ती बहुत पुरानी, गहरी और आपसी विश्वास पर आधारित है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों देश हमेशा साथ रहे हैं। पाकिस्तान ने काबुल में हुए भीषण बम धमाकों में शामिल होने के आरोप को निराधार बताते हुए खारिज किया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने अफगानिस्तान पर पलटवार करते हुए कहा कि अपनी नाकामियां छिपाने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। बुधवार को हुए इस हमले में 90 लोगों की मौत हो गई थी। अफगानिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने इसके पीछे पाकिस्तान के समर्थन से हक्कानी नेटवर्क का हाथ होने का आरोप लगाया था। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया के शब्द।
We actually reject the Afghan allegations, baseless allegations.
हम अफगानिस्तान के आरोपों, निराधार आरोपों को खारिज करते हैं। कीचड़ उछालने की प्रवृत्ति शांति के प्रयासों के लिए नुकसानदेह रही है। पाकिस्तान ने भी आतंकवाद का खतरा झेला है और मुझे लगता है कि हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। अफगानिस्तान में अमन और स्थिरता के हक में पाकिस्तान का बहुत कुछ दांव पर है। ये थे पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका से बढ़ती दूरियों के बीच जर्मन काउंसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि उन्हें वैश्विक असुरक्षा के समय में चीन के साथ साझेदारी बढ़ानी होगी। चीनी प्रधानमंत्री ली कचियांग की बर्लिन यात्रा के अंतिम चरण में दोनों देशों की कंपनियों ने इलेक्ट्रिक कारों के साझा प्रोडक्शन समेत कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ली कचियांग से मुलाकात के बाद मर्केल ने कहा,
Deutschland und China haben vor 45 Jahren diplomatische Beziehungen aufgenommen.
जर्मनी और चीन के बीच 45 साल पहले कूटनीतिक रिश्ते बने थे और तब से चीन एक अहम और अब एक रणनीतिक साझेदार बन चुका है। यह वैश्विक असुरक्षा का दौर है और हम अपनी साझेदारी को और गहरा करने की चुनौती स्वीकार करते हैं। ये थे जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के शब्द। ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था साल के शुरुआती 3 महीनों में 1% बढ़ गई है और इस तरह इस लातिन अमरीकी देश की आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा काल ख़त्म हो गया है। बीते 2 साल में ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था करीब 8% तक घट गई थी और रफ्तार माइनस में चल रही थी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि समाचारों में अभी आपने कुलदीप मिश्रा से सुना, चीन ने कहा है कि वो क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धताओं पर अडिग है। चीन के प्रधानमंत्री ली कचियांग का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका पेरिस क्लाइमेट समझौते से अलग हो सकता है। क्या कुछ चल रहा है, बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए विनीत खरे से।
जर्मनी की यात्रा के दौरान बोलते हुए चीन के प्रीमियर ली कचियांग ने कहा कि पर्यावरण बदलाव से युद्ध चीन के अपने फायदे में है। उन्होंने कहा कि चीन उम्मीद कर रहा है कि दूसरे देश भी ऐसा ही करेंगे। चीन में कहावत है, हमारे शब्दों की कीमत है और हमारा काम सफल है। पर्यावरण के बदलाव पर चीन अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और चीन इस सवाल पर अकेला नहीं है। इस मामले में हमारे वैज्ञानिक दुनिया भर से संपर्क में हैं और पर्यावरण को बचाने को लेकर प्रगति पर नजर बनाए हुए हैं। ये थे ली कचियांग के शब्द। याद रहे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2015 पेरिस समझौते पर अपने फैसले की घोषणा करने वाले हैं। अमेरिका में छपी कुछ रिपोर्टों ने इशारा दिया है कि वो समझौते से पीछे हट सकते हैं। चीन और यूरोपियन यूनियन के नेता पेरिस पर्यावरण समझौते पर एक संयुक्त वक्तव्य पर सहमत होने वाले हैं। रूस ने भी कहा है कि वो पर्यावरण पर किए गए वायदों को निभाएगा, लेकिन अमेरिका के बाहर जाने से पेरिस समझौते पर असर पड़ेगा। पेरिस समझौते में देश वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ठीक ठाक नीचे रखने पर राजी हो गए हैं और कहा गया है कि वो इसे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखने की कोशिश करेंगे। पेरिस समझौते में कहा गया था कि मानव क्रिया से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों पर 2050 और 2100 के बीच उस स्तर पर रोक लगेगी जब उन गैसों को पेड़, मिट्टी और समुद्र प्राकृतिक तौर पर सोख पाएं। उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अमेरिका से आग्रह किया है कि वो पेरिस समझौते से जुड़ा रहे। सेंट पीटर्सबर्ग में बोलते हुए एंटोनियो गुटेरेस ने बीबीसी से कहा कि चाहे अमेरिका इस समझौते से बाहर रहे, ये महत्वपूर्ण है कि सभी सरकारें इससे जुड़ी रहें।
इट इज ऑब्वियसली अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एज यूनाइटेड स्टेट्स इज द बिगेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड।
अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए अमरीका का फैसला बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी जरूरी है कि सभी देश इस समझौते से जुड़े रहें। पेरिस समझौता हमारे सामूहिक भविष्य के लिए जरूरी है। ये थे एंटोनियो गुटेरेस के शब्द। उधर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक एरिक सोलहम ने कहा है कि अमेरिका के बाहर जाने से पर्यावरण बदलाव के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले देशों में बिखराव नहीं होगा।
What we are seeing now is a completely new world. I mean, 10 years back, American withdrawal would have been a huge...
ये एक नई दुनिया है। 10 साल पहले अगर अमेरिका इस समझौते से पीछे हटा होता तो बड़ी बात हुई होती। अब स्थिति अलग है। चीन और भारत यूरोपियन यूनियन के साथ अग्रणी भूमिका में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले कहा था कि जलवायु और वातावरण पर कोई काम नहीं करना भविष्य की पीढ़ियों के खिलाफ एक जुर्म है। क्या इससे ज्यादा मजबूत संदेश कोई हो सकता है? ये थे एरिक सोलहम के शब्द। वर्ष 2007 में चीन अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया था। चीन की मीडिया में भी इस बात की आलोचना हो रही है कि अमेरिका इस समझौते से बाहर निकलने के इशारे दे रहा है।
तो जैसा कि आपने सुना कि चीन ने कहा कि लगता है कि अमेरिका जलवायु परिवर्तन समझौते से अलग होना चाहता है, लेकिन उनका देश यानी कि चीन अपनी प्रतिबद्धताओं पर डटा रहेगा।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,510, 9,460, 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर। भारत के थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत श्रीनगर में हैं। सेना प्रमुख कल तक यानी कि शुक्रवार तक श्रीनगर में रहेंगे। सेना प्रमुख कश्मीर के सुरक्षा हालात का सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। श्रीनगर से हमारे सहयोगी रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
यह महत्वपूर्ण बैठक श्रीनगर में भारतीय सेना की 15वीं कोर के हेडक्वार्टर पर आज सुबह हुई। बैठक की अध्यक्षता आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने की। इसमें भारत के 7 कोर कमांडरों के अलावा उच्च सैन्य अधिकारियों और सेना की गुप्त सर्विसेज के अध्यक्षों ने भाग लिया। सैन्य प्रवक्ता ने इस मीटिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, मगर सैन्य सूत्रों ने बताया कि कश्मीर में जारी भारत विरोधी आंदोलन और चरमपंथ को कुचलने के लिए एक कड़ी रणनीति पर बातचीत हुई है। इस दौरान सेना ने कश्मीर में सक्रिय हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के 12 कमांडरों की लिस्ट जारी कर दी है, जिन्हें अक्टूबर के अंत तक मार गिराने का लक्ष्य रखा गया है। लिस्ट में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जाकिर मूसा, रियाज काउसा और लश्कर तैयबा के अबू दुजाना भी शामिल हैं। इस बीच उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा जिले में सेना ने दावा किया कि इसने लश्कर तैयबा के 7 समर्थकों को हथियार और गोली बारूद समेत गिरफ्तार किया है। उत्तरी कश्मीर में सेना और पुलिस का दावा है कि जिन दो चरमपंथियों ने कल रात सोपोर के पुलिस थाने पर बम हमला किया था, इन्हें आज एक मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया। सूत्रों ने बताया कि श्रीनगर के सैन्य हेडक्वार्टर पर आज हुई मीटिंग में कमांडरों को बताया गया कि अलगाववाद या चरमपंथ को कुचलने के बारे में कड़ी नीति को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। गौरतलब है 27 मई को दक्षिणी कश्मीर के त्राल कस्बे में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सबजार भट्ट को अपने साथी फैजान के साथ एक झड़प के दौरान मारा गया। सबजार पिछले वर्ष मारे गए बुरहान वानी के साथी थे। सबजार की मृत्यु के बाद घाटी में स्थिति अस्त व्यस्त हो गई। 4 दिन तक कर्फ्यू और हड़ताल से आम जनजीवन ठप रहा। उधर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कश्मीर समस्या का समाधान 1 साल के भीतर निकालेगी, मगर उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। साथ ही केंद्र सरकार इस नीति को बार बार दोहरा रही है कि अलगाववादियों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम आपको भारत प्रशासित कश्मीर पर एक विशेष श्रृंखला सुनवा रहे हैं, जिसमें कि हम आपको कश्मीर के तमाम अनछुए पहलुओं के बारे में भी बता रहे हैं। कश्मीर का एक पहलू अलगाववादी विचारधारा का है, तो दूसरा पहलू उन जवानों का है जो कि वहां की विषम परिस्थितियों में लगातार तैनात रहते हैं। इन सुरक्षा बलों को हर रोज नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अनसीन कश्मीर, कश्मीर की कहानी, CRPF के DIG संजय कुमार की जुबानी, उनसे बात की BBC संवाददाता दिव्या आर्य ने।
मुझे लगता है अब ये समय आ गया है जब देखा जाए कि ह्यूमन राइट वायलेशन सिक्योरिटी फोर्सेज के लोगों पर कितना हो रहा है। इसका कारण ये है कि कम जगह ज़्यादा लोगों को रहना पड़ता है, हमेशा एक क्राइसिस होता है जिसमें उनको बेसिक ज़रूरत भी कई बार भूलना पड़ता है। एक आदमी के जो काम करने का जो नॉर्मल आवर्स होता है 8 घंटे, हमारे लोग 12 घंटे से लेकर 16 घंटे तक काम करते हैं, ये भी इनह्यूमन है। उनके ऊपर में पत्थर चलाया जाता है जब वो ड्यूटी पर होते हैं, ये ही इनह्यूमन है। उनको थ्रेश करते हैं, उनको इस तरह से प्रॉम्प्ट करते हैं, उनको पोक करते हैं कि मजबूरन कभी कभी उनको उनके ऊपर में फोर्स यूज करना पड़ता है, मगर ये पोक करना, ये उनको अग्रवेट करना, ये इनह्यूमन है। अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि कम ह्यूमन राइट वायलेशन हम कर रहे हैं, बल्कि उसके उलट। अभी ही आप जो एक मीडिया में चल रहा है, पहले सोशल मीडिया में फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, जिसमें एक छोटा सा सेक्शन 6 लोगों का जो गली से जा रहा है इलेक्शन ड्यूटी के लिए, उसके ऊपर में पत्थरबाजी की है, उसको थ्रैश किया है, तो हम पूछते हैं कि ये किसके खिलाफ ह्यूमन राइट वायलेशन है। वो भी तो एक आदमी ही है, उसके पास में हथियार है, उसके बावजूद वो बर्दाश्त करते जा रहा है, वरना उनके ऊपर वो चला सकता था। कोई और आर्मी होती, कोई और आर्म्ड फोर्स होता दुनिया का कोई भी, तो शायद इस तरह के ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं करता जो CRPF के उन सैनिकों ने किया। पहली बात तो मैं ये बात मानता नहीं, ये पत्थरबाज जो है आम कश्मीरी है, ये पत्थरबाज एक ग्रुप है जो जिनका अपना अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, या तो वो पैसे की वजह से हैं, या वो जो उन उस जैसे तत्वों के जो पाकिस्तान प्रो पाकिस्तानी हैं उनके द्वारा स्पॉन्सर किए जा रहे हैं। कभी एक खास जगह पर उनको मोबिलाइज किया जाता है, एक ही दिन में सारी जगह नहीं है, ये स्पॉन्सर्ड है, ये प्लान्ड है, अनप्लान्ड है उनके द्वारा जो पाकिस्तान से अपनी आदेश हासिल करते हैं। यहाँ के बच्चे कितने एजुकेशन इनका कितना मुश्किल में है, 4-4 महीने बंद रहा है स्कूल, 2-3 महीने बर्फ के विंटर वैकेशन वैसे हो जाते हैं, इसलिए हमें मजबूरन उनको पीस एरिया में, जहाँ भी हम समझते हैं कि इस तरह का ज़्यादा टर्बुलेंस नहीं है और जहाँ वो स्कूल जा सकते हैं, हॉस्पिटल जा सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं, जहाँ से वो अपनों के को तुरंत अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि लगातार अलग रहना वो भी एक समस्या है। आप जानते हैं फैमिली के पास होने से भी आपका स्ट्रेस रिलीज होता है।
कश्मीर की कहानी CRPF के DIG संजय कुमार की जुबानी।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
कर्ज माफी और अन्य कई मांगों को लेकर महाराष्ट्र के कई इलाकों में किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी जगह जगह बैरिकेड लगाकर कृषि उत्पादों को मंडी तक पहुंचने से रोक रहे हैं। मुंबई से हमारे सहयोगी अश्विन अघोर की रिपोर्ट।
महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार और शायद देश के इतिहास में भी राज्य के किसान आज सुबह से हड़ताल पर गए हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान पिछले कुछ दिनों से आक्रामक हो गए थे। उनकी मुख्य मांगें हैं, कृषि कर्ज माफ किया जाए, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाए तथा आयोग के सुझाव के अनुसार कृषि उपज को उत्पाद खर्चे के 1.5 गुना कीमत दी जाए। राज्य के किसान अपनी मांगों को लेकर 29 मई को देर रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मिले, लेकिन इस बैठक में कोई हल ना निकल सका। किसान नेता जीवाजीराव सूर्यवंशी ने बीबीसी को बताया,
मैं अभी फिलहाल तो आज तो असर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे मंडी में जो आवक होती है सब्जी और ऑनियन पोटैटो मार्केट में, तो ये आवक प्याज की आवक जो होती है वो महाराष्ट्र से होती है और आलू की आवक जो होती है वो महाराष्ट्र के बाहर से होती है, MP, UP, पंजाब, हरियाणा, गुजरात से होती है। आलू के आवक के ऊपर परिणाम नहीं हुआ और खास करके जो स्ट्राइक चालू हुआ है वो आज से चालू हुआ है और जो प्याज की गाड़ियां जो है वो कल रात को गाड़ी यहाँ पे आई है, इसके लिए आज इसका कुछ खास असर नहीं लगा है। आज यहाँ पे वाशी मंडी में सब्जी की 550 गाड़ियां थी और प्याज की 100 गाड़ियां यहाँ पे आवक थी, लेकिन आगे चल के कल असर गिरने की संभावना है, कल अच्छे ढंग से आवक कम हो जाएगा ऐसी संभावना।
सरकार द्वारा चर्चा का निमंत्रण मिला तो है लेकिन किसान नेता अपनी मांग पर डटे हैं। आज तड़के राज्य के सभी इलाकों में किसानों ने रास्तों पर जाम लगाकर कृषि उपज बाजार ले जा रहे वाहनों को रोककर सारा माल नष्ट कर दिया। कई जगह किसान हिंसा पर उतर आए और कृषि उपज ले जा रहे ट्रकों की तोड़फोड़ की, हजारों टन सब्जी और फल नष्ट कर दिए गए तथा लाखों लीटर दूध टैंकर से रास्ते पर बहा दिया। राज्य के कोल्हापुर, नासिक, सोलापुर, सांगली, सतारा, जलगांव, नांदेड़, औरंगाबाद, जालना और अहमदनगर जिलों में कई ट्रकों तथा टैंकर की तोड़फोड़ की गई। नासिक जिले के पिंपलगांव, बसवंत तथा लासलगांव समेत किसी भी APMC में किसानों ने कोई भी कृषि उपज नहीं लाया। हड़ताल की वजह से निफाड़ में जानवरों का बाजार भी नहीं लगा। लासलगांव के पास गुस्साए किसानों ने पुलिस जीप पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने 8 युवकों को हिरासत में ले लिया। जहां एक ओर राज्य के ज्यादातर शहरों में आज सब्जियां, फल, दूध नहीं पहुंच सके, वहीं मुंबई में आज इस हड़ताल का असर नहीं हुआ। मुंबई, नवी मुंबई तथा ठाणे की सब्जी मंडियों में किसी प्रकार की किल्लत महसूस नहीं हुई। मुंबई APMC में प्याज के व्यापारी अशोक वालुंज का कहना है कि इस हड़ताल का मुंबई पर खास असर नहीं पड़ेगा। अशोक वालुंज ने BBC को बताया,
स्ट्राइक ये आगे चल के कल से उसका परिणाम हो जाएगा क्योंकि आज जो मार्केट में सब्जी थी, हाँ, कल की जो बची हुई सब्जी थी वो सब्जी थी। मैं बहुत जगह अभी दूध के टैंकर खाली किए गए, दूध के टैंकर फोड़े गए, कोई जगह सब्जी के टैंकर जला दिए गए और बहुत जगह से बहुत गांव में जो हफ्ते का बाजार रहते हैं वो हफ्ते के बाजार बंद रह गए। सरकार ने कर्ज माफी की घोषणा करनी चाहिए, बाद में जो हमारे 10 मांगे उसके हम चर्चा कर सकते हैं।
इस हड़ताल का मुंबई पर क्या असर होता है ये आने वाला कल ही बताएगा। BBC हिंदी के लिए मुंबई से अश्विन अघोर।
तेजी से विकसित होने वाले देशों की रेस से भारत अब बाहर हो गया है। वित्त वर्ष 2016-17 की आखिरी तिमाही यानी कि जनवरी से लेकर मार्च के आंकड़े बताते हैं कि भारत के विकास दर यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट दर्ज की गई है। सुनिए सलमान रावी की रिपोर्ट।
नोटबंदी और निर्यात में आई गिरावट को अर्थशास्त्री इसके बड़े कारणों में से कुछ बताते हैं। संघ परिवार के नजदीक माने जाने वाले अर्थशास्त्री जगदीश शेट्टीगर भी मानते हैं कि नवंबर में हुई नोटबंदी का असर 3 महीनों के बाद दर्ज होना शुरू हुआ, मगर वो मानते हैं कि इस नोटबंदी के अच्छे परिणाम भी जल्दी ही सामने आएंगे। उनका कहना है कि नोटबंदी का बुरा असर अल्पकालिक है जबकि इसके दीर्घकालिक फायदे भी हैं।
ये तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म तो सब जानते थे, वो डिमोनेटाइजेशन असर तो पड़ेगा, उसमें जो डिमांड कम हुआ था उसका वजह से वो स्वाभाविक था, जो कैश कम होने का वजह से जो मांग कम होने का असर उत्पादन में होना तो सबका एस्टिमेशन था, तो मगर लॉन्ग टर्म में उसको फायदा तो मिलेगा।
जगदीश शेट्टीगर कहते हैं कि विकास दर में गिरावट के और भी कई कारण हैं। वो मानते हैं कि वैश्विक मंदी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भी इसके बड़े कारण रहे हैं। वैश्विक मंदी के परिणाम स्वरूप निर्यात में कमी दर्ज हुई है जिसका प्रभाव तो पड़ा ही है। उसी तरह खाड़ी देशों में भी तेल की कीमतों में आई गिरावट की वजह से वहां भारत से होने वाले निर्यात पर भी असर पड़ा है।
तो पिछले 2-3 साल से यूरोपियन यूनियन तो काफी लगभग नेगेटिव का है, तो और US थोड़ा रिकवर हुआ मगर फिर भी इतना नहीं है जैसे पहले, जो जो हमारा निर्यात को एक बड़ा मात्रा में सपोर्ट मिलता था जैसे यूएस और यूरो, वहाँ एक बड़ा एक धक्का हुआ। और दूसरी तरफ से जो मिडल ईस्ट है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, एक्सपोर्टिंग कंट्री, क्योंकि वहाँ भी हमारा थोड़ा निर्यात होता है, तो वो बीच में थोड़ा ये क्रूड ऑयल का कीमत कम हुआ। हमारा जहाँ तक आयात करने का बोझ है उसमें हमें काफी रिलीफ मिला, तो वो एक मगर जहाँ तक निर्यात का बात करते हैं तो निर्यात को सपोर्ट करने के लिए उनका खरीदने का शक्ति भी होना।
जाने माने अर्थशास्त्री मिहिर शर्मा ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि बैंकों की बुरी हालत ने भी विकास दर में गिरावट लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। उनका कहना है कि बैंकों ने लाखों करोड़ रुपए बतौर कर्ज दिए तो थे, मगर कर्ज लेने वालों ने उन्हें लौटाया ही नहीं, जिससे बैंकों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी।
एक फैक्टर है कि ये हमारा ये जो बैंक का जो प्रॉब्लम है, जो लोन पीपल ने लिए और रिपे नहीं किए हैं, उनका बड़ा भारी वजन पड़ रहा है ग्रोथ पे, क्योंकि बैंक्स अब किसी और को भी पैसे नहीं दे रहे हैं और बिना लोन्स के इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता और बिना इन्वेस्टमेंट के ग्रोथ नहीं।
मिहिर शर्मा का कहना है कि ये गिरावट शहरी इलाकों की स्थिति की वजह से ज्यादा है, न कि ग्रामीण इलाकों की वजह से।
प्रॉब्लम है ये अर्बन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन में, ये सब चीज जो परमानेंट जॉब देते हैं, जो शहर में जॉब देते हैं, वो नहीं पड़ रहे, उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, उसी से प्रॉब्लम।
हालांकि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में हालात सुधर भी सकते हैं, क्योंकि नोटबंदी का असर अब खत्म हो चुका है और निर्माण क्षेत्र में भी बंद पड़ा काम शुरू हो गया है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
और अब आपकी राय।
आपकी राय, नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और
इंदु पांडे
और
का
इंदु
भी?
पांडे का भी, जी बिल्कुल, नमस्कार आपका भी, श्रोताओं को और श्रोताओं, आपको हफ्ते भर इंतजार रहता अपनी चिट्ठियों का। हम चिट्ठी लेके आए हैं और मैं अगर इंदु जी के चेहरे की तरफ देख रहा हूं तो बहुत गंभीर मुद्रा है उनके चेहरे की।
राजेश जी, हमारे पास दो ईमेल आए हैं जो कि वाकई काफी गंभीर बात कहते हैं। इन्होंने लिखा है डॉक्टर रहमतुल्ला रहमानी, ग्राम सुरजापुर, जिला सुपौल, बिहार से, और दूसरा ईमेल है अतुल मिश्रा का, यूनिवर्सिटी ऑफ प्लिमथ
यूनाइटेड किंगडम। जी
जी, इनका कहना है कि ऐसा दो बार हुआ, जब तृप्ति श्रीवास्तव समाचार पढ़ रही थी तो उन्होंने प्रोग्राम में दो बार बगदाद को अफगानिस्तान की राजधानी बताया। अब कन्फ्यूजन ये है कि इस धमाके की घटना को इराक की राजधानी बगदाद समझा जाए या अफगानिस्तान की राजधानी काबुल।
पहले तो मैं अपने सभी श्रोताओं से और खास तौर पर डॉक्टर रहमतुल्ला रहमानी और अतुल मिश्रा जी से क्षमा मांगता हूँ कि ये गलती बीबीसी पर नहीं जानी चाहिए थी, और हम अपनी गलतियों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। जो पाठक, जो श्रोता हमारी गलतियों की तरफ ध्यान दिलवाते हैं, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। इस तरह की गलती नहीं जानी चाहिए थी। एक आध बार कभी गलती हो जाती है, लेकिन बार बार अगर वो गलती हो तो उसको लापरवाही कहा जाता है, और हम इस बात को स्वीकार करते हैं बहुत ही विनम्रता से कि हम कोशिश करेंगे कि जिन हमारे साथी से ये गलती हुई है उनको पूरी बात बताई जाए और आपकी बात उन तक पहुंचाई जाए। साथ ही हम ये भी कोशिश करेंगे कि अगली बार से इस तरह की गलतियां ना हो, इसकी हम जो संपादकीय हमारी प्रक्रिया होती है उसमें इस बात को हम बहुत गंभीरता से इस पर चर्चा करें और आपको शिकायत का मौका कम से कम दें।
और दूसरा ईमेल आया है आफताब आलम अंसारी का, लिखते हैं कि मैं नहीं जानता कि बीबीसी हिंदी के फेसबुक पेज पर आने वाले लोग इतनी अनाप शनाप बात क्यों लिखते हैं।
ये तो जो हमारे श्रोता हैं, पाठक हैं, उनकी अपनी आज़ादी है। हम ये ज़रूर सबसे गुजारिश करते हैं कि आप भाषा को संयत रखें, चाहे वो बीबीसी हिंदी रेडियो के कार्यक्रम में आप हिस्सा ले रहे हों या आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कोई टिप्पणी कर रहे हों। भाषा को संयत रखना बहुत आसान होता है अगर एक बार आप ठान लें कि अपना गुस्से का इजहार भी अगर आप कर रहे हैं लेकिन संयत भाषा में करें तो वो संभव है। लेकिन मैं तमाम श्रोताओं से ये भी गुजारिश करूंगा कि फेसबुक पन्ने पर भी आएं, हमारी वेबसाइट पर भी आएं, रेडियो कार्यक्रम भी सुनें और हमारा साथ देते रहें।
तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फेसबुक पेज से गैर जरूरी कमेंट हैं उनको डिलीट कर दिया जाए?
इसकी एक प्रक्रिया है, हमारे एक साथी जो भी टिप्पणियां हैं उनको देखते हैं और उनमें जो अश्लील हैं या जो भाषा का संयम जहां खो देते हैं लोग, उनको डिलीट करने की भी एक तरीका है। लेकिन कितने ऐसी टिप्पणियों को डिलीट किया जाए, बहरहाल हम ये कार्यक्रम ऐसे करते रहेंगे और आप अपना सहयोग बनाए रखें।
और दूसरा ईमेल हमारे पास आया है कमलेश कुमार का गुड़गांव हरियाणा से। लिखते हैं कि इस बार की इंडिया बोल का नाम अगर बीबीसी बोल रख देते तो अच्छा होता, क्योंकि पहले के 10 मिनट तो आपने मेक इन इंडिया की नाकामयाबी को सुनाया और बाद में 5 मिनट मौजूदा विशेषज्ञ और एंकर से सरकार की नाकामयाबी का बखान हुआ।
भाई लगता है इस बार श्रोताओं ने तय कर लिया है कि वो बीबीसी के पिछले हफ्ते जो कार्यक्रम हमने प्रसारित किए उनमें जो उनको चीज़ पसंद नहीं आई बहुत खुलकर उसको रखेंगे। और ये मैं बहुत पसंद करता हूँ इस बात को कि हमारे श्रोता जितनी मोहब्बत हमसे करते हैं, बीबीसी से करते हैं, उतने ही निष्ठुर होकर के हमारी आलोचना भी करते हैं। लेकिन इंडिया बोल के बारे में इनका जो कहना है वो उनकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, पर जो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे उनके सामने कई तरह का दबाव होता है। दोनों तरफ की बात को लाना और उसके बाद श्रोताओं को उनका पूरा वक्त देना, वो बैलेंस कभी कभी टूट जाता है, कभी कभी वो बैलेंस थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, इसको हम मानते हैं। संदीप सोनी वो कार्यक्रम प्रसारित कर रहे थे, उन तक मैं जरूर ये बात पहुंचाऊंगा और उनसे बात करेंगे।
और विकास शर्मा कुरुक्षेत्र से लिखते हैं कि वसुतल्ला की पाकिस्तान डायरी बिहारी के दोहों की तरह होती है, बड़ी बड़ी बहसें वो बात हमारे जहन में साफ नहीं करती जो उनकी ये संक्षिप्त सी रिपोर्ट कर देती है।
ये बात तो सही कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अब
पता बता देना चाहिए
क्योंकि समय हो चुका है। लेकिन एक बार फिर से मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूं कि हमारे कार्यक्रमों को गौर से सुनिए, हमारी वेबसाइट को गौर से पढ़िए और आपको जो पसंद आता हो या जो पसंद ना आता हो दोनों के बारे में अपनी बेबाक राय हम तक पहुंचाइए। आपके और हमारे बीच में जो ये पुल है ये इससे और मजबूत होगा। मैं पता बताता हूँ, बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003। और ईमेल लिखना चाहें तो लिखेगा hindi.letters@bbc.co.uk पर।
नमस्कार।
तो श्रोताओं आपने अपनी चिट्ठियां सुन ली और अब कार्यक्रम में वक्त है खेल समाचारों का। चैंपियंस ट्रॉफी के साथ के समाचारों के साथ राखी शर्मा मौजूद हैं। राखी क्या चल रहा है क्रिकेट में?
जी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की आज आधिकारिक शुरुआत हुई है। आज पहला मुकाबला बांग्लादेश और इंग्लैंड की टीमें खेल रही हैं ओवल के मैदान पर, जिसमें इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी को चुना, जिसका नतीजा ये रहा कि बांग्लादेश की टीम 50 ओवरों में 6 विकेट खोकर 305 रन बनाने में कामयाब रही। ये इंग्लैंड की टीम के खिलाफ बांग्लादेश का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले
बहुत ठोका है।
जी बिल्कुल, 280 रन इससे पहले बना चुकी थी, जहां तक हाईएस्ट स्कोर का सवाल है। और आपको बता दें कि शतकीय पारी खेली तमीम इकबाल ने, उन्होंने अपनी पारी में 128 रन बनाए और इसके अलावा मुशफिकर रहीम 79 रनों का इनका योगदान रहा। दोनों के बीच 166 रन की साझेदारी हुई है। बांग्लादेश की टीम अब तक चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब नहीं जीत सकी है, लेकिन तमीम इस टीम के ऐसे दूसरे बल्लेबाज बने हैं जो इस टूर्नामेंट में शतक जड़ चुके हैं। उनसे पहले शहरयार नफीस 2006 में जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने नाबाद 123 रन की पारी खेली थी। जहां तक इंग्लिश टीम की गेंदबाजी का सवाल है तो तेज गेंदबाज लियम प्लैंकेट सबसे सफल रहे, उन्होंने 59 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। जैक बॉल और बेन स्टोक्स 1-1 विकेट लेने में कामयाब रहे। क्रिकेट के मैदान के बाहर से भी एक खबर है, जहाँ इतिहासकार रामचंद्र गुहा जिन्हें बीसीसीआई की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी सीईओए से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के पीछे उन्होंने निजी कारण बताया है। गुहा ने सुप्रीम कोर्ट से रिलीव किए जाने की इजाज़त मांगी है। खास बात यह है कि गुहा के इस्तीफे को अनिल कुंबले के भारतीय टीम के कोच पद के विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया राखी। और अब कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने अमेरिका से जलवायु परिवर्तन पर हुए पेरिस समझौते में बने रहने की अपील की है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गुरुवार को सेंट पीटर्सबर्ग में मुलाकात हुई। इस मौके पर पुतिन ने कहा कि भारत हफ्ते भर में शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का औपचारिक सदस्य बन जाएगा। उधर पाकिस्तान ने काबुल में हुए भीषण बम धमाके में शामिल होने के आरोप को निराधार बताते हुए खारिज किया है। अमेरिका से बढ़ती दूरियों के बीच जर्मन काउंसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि उन्हें वैश्विक असुरक्षा के समय में चीन के साथ साझेदारी बढ़ानी होगी। चीनी प्रधानमंत्री ली कछियांग की बर्लिन यात्रा के बाद उन्होंने ये बात कही। ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था साल के शुरुआती 3 महीनों में 1% बढ़ गई है और इस तरह इस देश की आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा काल खत्म हो गया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राजभाटिया। सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।